आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समय सार गाथा 27 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए और ऊर्जा चकासे चित्त भावाय भावाय सरल भावंत।
समय सार परमागम की 27वीं गाथा पर कल चर्चा चल रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि व्यवहार में ये कहता है व्यवहार नयो भासदी जीहो जीवो देहो हवदि खलु इक्को नदु निश्चयेण जीवो देहो भी कदापि ये कठो। व्यवहार में ये कहता है कि जीव और देह एक ही है, पर निश्चय में कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। देखो, एक ही गाथा में, एक ही सांस में आचार्य दो बातें कहते हैं। ऊपर की लाइन में कहते हैं कि व्यवहार नए से देह और आत्मा एक ही है, और नीचे कहते हैं कि निश्चय नए से देह और आत्मा कदापि एक नहीं हो सकते। पर जनागम में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बिना प्रयोजन के तो लिखा नहीं जाता। यदि उन्होंने ये कहा है कि देह और आत्मा एक है तो उसका भी कोई प्रयोजन है, और उन्होंने ये कहा है कि देह और आत्मा कदापि एक नहीं हो सकते हैं तो उसका भी प्रयोजन है। बुद्धिमानी इसमें है कि जो वो कहना चाहते हैं ऐसा कहकर हम उस भाव को पकड़ने की कोशिश करें, न केवल उनका गला पकड़ने की कोशिश करें कि कोई ठिकाना है इनका, एक मिनट में कहेंगे एक है, एक मिनट में कहेंगे एक नहीं है। क्यों? लेकिन वो ऐसी बात यदि कहते हैं तो उनके पीछे उसका अभिप्राय क्या है, क्योंकि तुमको ठगने के लिए तो ये बात कहते नहीं होंगे। उन्हें भी तो कोई नया पंथ तो चलाना नहीं था, उन्होंने तो मूल बात कहनी थी ना। हम अपने मूल आचार्य पर भी अविश्वास करने लगेंगे तो फिर हमारा कहाँ ठिकाना रहेगा। ये बच्चा होता है ना थोड़ा, 5 बरस का 2 बरस का 3 बरस का, तो अपन लोग चढ़ाने के लिए उससे कुछ भी बात कहते हैं, तेरे पापा की टांग टूट गई है, वो अस्पताल में भर्ती है, कुछ भी उसे चढ़ाने के लिए कहते हैं जिससे वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गए। तो वो जाकर के अपनी माँ से कन्फर्म करता है कि मम्मी ये कह रहे सच्ची बात है, और माँ ये कहती कि नहीं नहीं ये तो मजाक कर रहे हैं, तो खत्म। तो फिर उसे कुछ सोचना नहीं है, है ना। और वो कह दे कि हाँ सचमुच बात है, तो फिर एकदम सीरियस हो जाता है, आपके कहने का वो भरोसा नहीं करता है। हर बात को अपनी मम्मी से कन्फर्म करता है। इतनी अकल तो 2-3 बरस के बालक में भी होती है। तो आपको भी कहीं कोई शंका लगे तो अपनी जिनवाणी माँ से कन्फर्म कर लो ना भले आदमी, और फिर जिनवाणी माँ जो कहे उस पर तो आंख नीच कर भरोसा करो, क्या उसमें भी शंका करें। कहा तो है लेकिन ये कहां से छपा है जरा ये देख लू इसका क्या अर्थ है। मैं इसके लिए एक बात कहा करता हूं हमेशा ही, यहां भी कहता हूं, मैं नहीं समझता हूं कि यहां को कहा होगा, क्योंकि आया ही कितना हूं। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और उसके लोग उससे उसके पिता का नाम पूछते हैं, और उसे पता नहीं है, पता नहीं कोई पिता का स्वर्गवास हो गया हो, प्रदेश में रहता हो, अपने बच्चे पिता को नहीं जानते हैं। बहुत तो सब तो जानते ही हैं, लेकिन एकाध कोई अभागा ऐसा भी होता है ना, तो वो अपनी माँ से जाकर पूछता है कि मम्मी मेरे पापा कौन है। कुमुदिनी, क्योंकि इस जगत में उसके पापा कौन है इस बात को उसकी मम्मी से अधिक कौन जान सकता है, और कौन उसका अधिक सबसे प्रमाणिक व्यक्ति है जो ये बताए कि उसके पापा कौन है, और माँ बताए कि फला व्यक्ति किसी का नाम ले वे तो जिंदा तो मरेगा भूत तेरे पापा थे या है जो भी समझ लो, तो लड़का एकदम मान लेता है ना। योग्य लड़का होता है तो एक सेकंड में मान लेता है कि वो ये कहता है कि मम्मी ये सच्ची बात है। यदि वो बेटा अपनी माँ से एक कहे कि तू ये बता रही है कि मेरे पापा वो हैं, ये सच्ची बात है, तो बोलो माँ की क्या हालत होगी। सोचना आप जरा, कल्पना करना, क्योंकि वो कहे हाँ बेटा क्या बात करता है, सच्ची बात है, मैं कह रही हूँ सच्ची है बिल्कुल, तेरे पापा यही है। तो वो एकदम कहे भारतीय द प्रूफ, बोलो अब क्या होगा, क्यों समझ में आए ना। वो एक कहे कि इसका क्या प्रमाण है, तो माँ क्या प्रमाण दे उसको, बोलो है प्रमाण देगी, प्रमाण देना चाहिए, सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। वो माँ तो एक कहेगी कि बेटा मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती है और मैं उसी में समा जाऊं, क्योंकि मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा बेटा भी मुझसे कभी ये पूछेगा कि उसके पापा कौन है। तूने पूछा तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, बता दिया। सर ये तो सोचा ही नहीं था कि ये मेरे से ये कहेगा कि ये बात सच्ची है क्या, क्या माँ की बात में भी कभी ये प्रश्न खड़ा होता है। पिता कहे तो माँ से कन्फर्म करे, लेकिन माँ कहे और इस मामले में क्यों, तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। लेकिन बेटा तुझे मूर्ख समझ के मैंने दूसरी बात भी बर्दाश्त कर ली, कौन सी कि सच्ची बात है, लेकिन ये तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि ये मुझसे कोई प्रूफ भी मांगेगा, नहीं तो मैं कोई प्रूफ भी रखती क्यों। और मेरा सगा बेटा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे पर कितने ही आरोप लगाए, पति भी आरोप लगाए, मैं जंगल में जाने को तैयार हूं महासती सीता जैसी, अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन इतिहास में और पुराणों में आज तक किसी माँ से किसी बेटे ने इसका प्रूफ मांगा हो कि उसका बाप यही है जो तुम कह रही है, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया। आया हो तो बताओ मुझे, आप बताना कि फला बेटे ने मांगा था, बोला नहीं है, बोलो आप सोचो। लेकिन तू ऐसा पैदा हुआ है कि जो इस बात का प्रूफ मांगता है, बस मेरी भगवान से तो यही प्रार्थना है कि मुझे जल्दी से जल्दी उठा ले, अब मुझे इस पृथ्वी में रहने का कोई रस नहीं है, मैंने सारी दुनिया की बर्दाश्त की तेरे पीछे क्या, लेकिन अब जब तू ही मेरे से ऐसी बात करने लग गया तो इस जगत में रहने का मेरे को कोई रस नहीं रह गया है। आज तक किसी माँ को ऐसे सवाल का सामना नहीं करना पड़ा होगा, पर जिनवाणी माता को करना पड़ रहा है क्या, सोचो अब आप। कि हम के शास्त्र में लिखा है, लिखा सत्ता है, व्हाट इज द प्रूफ, क्यों ये जो लोग मान रहे हैं वो जिनवाणी माता के कैसे बेटे हैं, उन्हें अपनी गर्दन में झांक कर देखने की कोशिश करनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि हमारी हजारों किताबें शास्त्र लोगों ने जला दिए, पानी में गला दिए, आज की बात नहीं करता हूं, बहुत पुराने जमाने से शास्त्रों के भंडार में आग लगा दी। क्यों? तो जिनवाणी माता, मैं तो कहता हूं किसी ने आग नहीं लगाई, हमारे ऐसे व्यवहार को देखकर वह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई है। क्या क्या तारा है उसके पास, हम ही उसको अश्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। जिसके पीछे मां सर्वस्व समर्पण करती है, वो बेटा ही, वो बेटी ही उसे अश्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे तो उसके जीने का क्या सार्थकता है। तो जिनवाणी माता भी हमारे पास क्यों रहे जब हम उसे ही आग लगाने लग जाएं, उसे ही हम पानी में डोलने लग जाएं, उस पर अविश्वास करने लग जाएं? क्यों? इसलिए कहते हैं कि जिनवाणी के प्रत्येक वाक्य को किस श्रद्धा के सुनना चाहिए, जैसे कि वो 2 वर्ष का बालक अपनी माँ के हर वाक्य को कितनी श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है, पर माँ यदि सील लगा दे तो फिर उसके दिमाग में कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं रहता। ये जिनवाणी के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए तो कुछ हमारे पल्ले पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि देह और आत्मा एक है, ऐसा भी कह रहे हैं, और अगले ही समय ये भी कह रहे हैं कि ये कदापि एक नहीं हो सकते, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। बोलो। 2 मित्र परदेश गए थे और वहां से लौट के अपने घर आ रहे थे, पर दोनों में अकाल बहुत प्रगाढ़ विश्वास था, मित्रता थी घनी। एक जब वो उनके पास माल भी बहुत था, परदेश से कमा के लाए थे, इसलिए जंगल वगैरह में जब कहीं आराम करते थे तो एक सोता था और दूसरा जागता था, और जब वो सोता था तो दूसरा जागता था कि जिससे कोई माल चोरी न चला जाए। एक मित्र सो रहा था, दूसरा मित्र जाग रहा था। इतने में एक नाग देवता आया, ध्यान से सुनना, और वो सोते हुए मित्र को काटने लगा, तो उसने उसे बचाने की कोशिश की, सांप को मारने की कोशिश की। वो तो देवता था ना, तो उसने कहा, देख भाई, मेरे इस पूरब भव का इससे बैर है, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसका गले का खून नहीं पीऊं तो मेरा नाम नहीं, अब मैं तो गले का खून तो पीऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अर्जुन की प्रतिज्ञा से कोई कमजोर नहीं है, यदि तू इसके गले में से एक बूंद खून निकाल के मुझे दे दे तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी समझ के वापस चला जाऊंगा, इसे डसूंगा नहीं, नहीं तब तू कुछ भी कर, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके गले में इसे डसूंगा जरूर जरूर जरूर। उसने कहा कि भाई ये उपाय बता रहा है तो कर दो। तो वो सो रहा था मित्र, और अपनी तलवार से उसने उसके गले का हिस्सा थोड़ा काटा, ध्यान से सुनना, एक बूंद खून निकालने के लिए, तो गर्दन कटेगी चाहे एक बूंद खून निकालने के लिए ही, तो नींद तो खुलेगी ना, क्यों जय कुमार जी, नींद खुली, तो उसने आंख खोली, ध्यान से सुनना, असली मर्म की बात है, और देखा कि मेरा मित्र मेरी गर्दन पर तलवार चला रहा है, तो उसने वहीं आंख बंद कर ली और सो गया, और उसने वो एक बूंद खून निकाल के सांप को पिला दिया, सांप वापस चला गया, बाद में जब समय था वो जगा और दोनों आगे आगे बढ़ना शुरू किए। 2-3 महीने आगे बढ़ते गए तो जिसने वो गला काटा था ना, वो सूख कर दुबला होने लगा, लेकिन वो तो मस्त था, कौन जिसका गला काटा था वो मस्त था, लेकिन जिसने गला काटा था वो सूख कर दुबला होने लगा। तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, न तेरा खाने में मन, न पीने में मन, न इसने में मन, दुबला होता जा रहा तो है, घर पहुंचेगा तो क्या हालत होगी, तेरे माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम बता तेरे वो क्या किस बात की चिंता है, कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कहीं तुम सच मत बता, सच बता सच बता। उससे एक विकल्प था कि मेरे मित्र ने इसके गले पर तलवार चलाते हुए देख लिया है और फिर आंख बंद करके सो गया है, तो ये समझता है कि मैं इसका धन हड़पने के लिए इसे मारना चाहता था, क्योंकि इसने देख लिया इसलिए मैंने तलवार हटा ली। तो इसके हृदय में मेरे प्रति अब विश्वास नहीं रहा है, गाड़ी चल रही है, आगे घर जाना है तो चल रही है, लेकिन अब इसके हृदय में मेरे प्रति कोई विश्वास नहीं रहा, पर इस चिंता में वो सूखता जा रहा, क्या तो कुछ सकता नहीं समझ लगे। तो उसने बहुत आग्रह किया तो उसने कहा कि तू जानना चाहता क्या जानना चाहता, सच सच बता, सच सच बता कि मैंने तेरे गले पे तलवार चलाई तूने देखी थी कि देखी थी, तो आंख फिर बंद करके क्यों सो गया, क्यों मैंने देख लिया कि तू है तो मुझे क्या चिंता थी, तुम्हें चला रहा मुझे क्या चिंता थी, मुझे क्या सोचना था, तो मैं काय को देखता, कुछ और तो नहीं है इसलिए मैंने देखा था, लेकिन जब देख लिया कि तू है तो मैं तो आराम से सो गया। तो तूने फिर मेरे से सुबह पूछा क्यों नहीं, आज तक पूछा क्यों नहीं कि ऐसा मैंने क्यों किया, तू पूछता तो मैं स्पष्टीकरण तो दे सकता था कि क्या पूछना था। मैं ये जानता था कि मेरा मित्र है, मेरा गला भी काट रहा है तो मेरे हित के लिए काट रहा होगा, इतना मैं जानता था बस, क्या कि मेरा गला ये काट रहा है तो मेरे कल्याण के लिए काट रहा होगा, इस बात को मैं जानता था, इसलिए मुझे पूछने का विकल्प ही नहीं आया। लेकिन तू दुबला क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा हूं कि तू मुझे समझ रहा होगा कि मैं तेरा धन लूटने के लिए काट रहा था, कि वो ये सांप आया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कि ये मुझे नहीं सुनना है, मैं तो बिना कहे ही जानता हूं। ख्याल में आए ना, विश्वास इसे कहते हैं, जिनवाणी माता का ऐसा विश्वास होना चाहिए, ख्याल में आया ना, तब जाके कल्याण का मार्ग खुलेगा, और बात बात में सगी माँ पे, सगे भाई पे, सभी मित्र पे, सगे ज्ञानी पे, गुरुओं पर, हरेक पर, कदम कदम पर शंका करेगा तो ये जैन दर्शन का मार्ग नहीं है, ये तेरे को उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो उन्होंने ऊपर की पंक्ति में एक बात कही, नीचे की पंक्ति में बिल्कुल उससे उल्टी बात कही, तो इसमें भी कोई आत्मा के कल्याण का रहस्य होगा, और हमें वो क्या कहना चाहते हैं उस बात पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। तो ऊपर का नए व्यवहार कथन साफ लिखाना उनने कि व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एक को, कि व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक ही है, ही लगा है, खलु लगा ना, और निश्चय, निश्चय से तो नहीं कह सकते हैं, खलु माने निश्चय नहीं, तो निश्चय से तो नीचे है, तो ऊपर व्यवहार ने कहता है कि निश्चय से देव जीव एक है, व्यवहार तो निश्चय नय का कथन हो गया, तो व्यवहार नय का कथन कैसे होगा, क्यों ठीक है ना मिलाला जी, निश्चय माने पक्की बात, निश्चय में जो कह रहा हूं इसमें शंका नहीं करना, बस इस अर्थ में ही वो निश्चय है और इससे ज्यादा निश्चय नहीं है। लेकिन नदु निश्चयेन जीवो देहो कदापि एकत्व, यहां भी है, कदापि कभी भी एक नहीं हो सकते, तो ऊपर के व्यवहार का कोई प्रयोजन होगा, तो ये असद्भूत व्यवहार का उदाहरण है, कौन सा, क्योंकि सद्भूत व्यवहार का उदाहरण तो सातवीं गाथा में दिया है, सातवीं गाथा में क्या दिया है, व्यवहारेण बदस्यदि जीवस्य चरित्र दंशनम नाणम नमिनाणम न चरित्रम न दंशनम जानगो शुद्धो। व्यवहार में ऐसे कहा जाता है कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, न निश्चय से न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। ये व्यवहार सद्भूत व्यवहार का कथन है और 27वीं गाथा असद्भूत व्यवहार का है। तो असद्भूत व्यवहार में अपन ने कल उपचरित असद्भूत व्यवहार की बात तो बताई थी। क्या बताई थी? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव इन सबको अपना कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। क्यों? वो सुमेर पर्वत को अपना कहना वो तो कोई नए में ही नहीं आता। तो किनको ये असद्भूत व्यवहार में उपचरित में कौन आते हैं सोचना जरा अमोलकचंद जी। ये आते हैं जो हमारे पुण्य पाप के उदय से हमें जो संयोग मिले हैं वे उपचरित असद्भूत व्यवहार नए में आते हैं। बाकी गेह से कोई लेना देना नहीं है। क्यों आते हैं जी? कि हमारे पुण्य पाप के वजह से स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव सब मिले हैं। क्यों? ये हिंदुस्तान मिला है आपके पुण्य के वजह से पाप के वजह से प्रकाश आपको है? नहीं मिला? मिला ना। ये इतना सुंदर देश में तुम पैदा हुए बिना पुण्य के उदय के हो सकते थे? किसी मिलिच्छ देश में कुवैत में पैदा हो जाते तो क्या होता? मार पड़ती अभी इराक मार मार के भगा देता। पीने को पानी नहीं मिलता ढंग से। तो ऐसा कैसे कह रहे हो कि हमारे हम इससे साल इतने आर्य देश में पैदा हुए जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ उस भूमि में हम पैदा हुए हमारे पुण्य का फल नहीं है? तो जो जो हमारे पुण्य और पाप के उदय से हमें मिला है उन सबको अपना कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। यानी हेतु है, मुफ्त में नहीं कह दिया अपना अपना पुण्य और पाप उसमें निमित्त है तब कहा। सुमेर पर्वत तो अपने पुण्य के उदय से अपन को मिला नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं अपना? अमेरिका तो हमारे पुण्य के उदय से हमें मिला नहीं है तो उसे हम कैसे कह सकते हैं अपना? आगे ना ख्याल में यानी इतनी मर्यादा करना उससे अनंत गए छूट जाएंगे। उपचार सदूर व्यवहार में अनंत गए छूट गए। एक लिमिटेड मर्यादा हो गई ना तो हमारे पुण्य पाप के उदय से जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उनको अपनी कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। ठीक है, याद रहेगा मोहनलाल जी। भैया पुण्य के उदय से कहो ना, पाप के उदय से क्यों कहते हो? स्त्री पुत्र मकान जायदाद हिंदुस्तान हमें पाप के उदय से मिला क्या कि पुण्य के उदय से मिला? पाप क्यों कहते बार बार? अपने पुण्य पाप के उदय से, अपने पुण्य पाप के उदय से। बोलो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा पुण्य के उदय से मिलता है क्या पाप के उदय से? क्यों? ऐसा वो तो सब पुण्य के उदय से मिलता है, ऐसा नहीं है। पाप के उदय से भी मिलते हैं। यदि पुण्य के उदय से अच्छा बेटा मिलेगा तो नालायक बेटा भी पुण्य के उदय से ही मिलेगा। सैनिक को जो कुणिक मिला था पुण्य के उदय से के पाप के उदय से? इसने उन्हें जेल में डाल दिया था। और क्या जहांगीर को औरंगजेब मिला था क्या? शाहजहां को किसको मिला था? तो पुण्य के उदय से के पाप के उदय से? अब समझ में आ गया कि नहीं? जो अपनी दुकान के सामने दुकान खोल ले और कहे कि पिताजी का दिवाला नहीं निकालू तो मेरा बाप नहीं, तो वो बेटा पुण्य के उदय से क्या पाप के उदय से कंपटीशन करे हमारे साथ ही? रोजाना अदालत में हमें खड़ा करे वो पुण्य के उदय से क्या पाप के उदय से? अब तो आप समझ गए होंगे कि बेटा पाप के उदय से भी मिलता है और पुण्य के उदय से भी मिलता है। क्यों? और स्त्री भी, अब समझ लेना, पति भी, ये शराबी कबाबी पति भी पुण्य के उदय से मिलते होंगे। खुद नरक निगोद में जाने की तैयारी करे और पत्नी को भी नरक निगोद में ले जाने की कोशिश करे वो पुण्य के उदय से क्या पाप के उदय से? बोलो, अब समझ लेना। अब तो एक मैंने आपको वो दे दिया उससे सब लगा आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये लाखों रुपया ही तो पुण्य के उदय से मिलते हैं। क्यों है? ये किलो किलो सोना ही तो पुण्य के उदय से ही मिलते होंगे। क्यों? ये डाकू आकर पीट पीट के जब तावी ले लेके नेक आते हैं वो पुण्य के उदय से के पाप के उदय से? इनकम टैक्स वाले परेशान करें, सेल टैक्स वाले परेशान करें, चंदा लेने वाले परेशान करें जो धन परेशानी का कारण बने समझ लेना पाप लोग ऐसे मिला। नहीं तो आराम से सोते ना कि हमारे पास तो उन डाकू की चिट्ठी आई, हमारे तो नाक में दम है। मैंने कहा हमको तो आज तक किसी डाकू की चिट्ठी के दर्शन ही नहीं हुए हैं। मित्रा विज्ञान के पाठकों की चिट्ठियां जरूर मिलती है क्यों? लेकिन डाकू का पत्र आज तक मिला ही नहीं ना, क्योंकि वो डाकू वाला माल ही नहीं है तो मिले कैसे, समझ गए ना? तो हमारे पुण्य पाप के उदय से जो भी संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, उन संयोगों को अपना कहना ये असद्भूत व्यवहार नये का काम है। ठीक है? नहीं अभी असद्भूत सोच के बोल रहा हूं, भूला नहीं हूं। अब इनके दो भेद करना कि एक नजदीक के संबंधी संयोग और एक दूर के संबंधी संयोग। तो दूर के संबंधी जो है संयोग उनको बोलते हैं उपचैत असद्भूत व्यवहार नये, और नजदीक के संबंधी को बोलते हैं अनुपचैत असद्भूत व्यवहार नये। अब दूर का और नजदीक का कैसे हिसाब निकालें कि कौन सा संबंध दूर का है और कौन सा नजदीक का है? बाप बेटे का दूर का है और पति पत्नी का नजदीक का है? ये तो सब दूर ही के हैं, तो नजदीक का कौन? ये देह और आत्मा का जो संबंध है उसे बोलते हैं नजदीक का संबंध। क्यों बोलते हैं? तो उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि जो इस जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारा साथ निभाए वो नजदीक का है ना, और जो बीच में ही साथ छोड़ जाए वो दूर का, इतना सा हिसाब है। अब आप यहां से बंबई जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है शरीर को यहीं रख जाएं और आप बंबई चले जाएं, कि शरीर बंबई चला जाए और आप यहीं रह जाएं, नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी को यहां छोड़ के जा सकते हैं, आप अकेले बंबई जा सकते हैं, मकान को छोड़ के जा सकते हैं, समझ गया ना? जिनको इसी भव में छोड़ा जा सके उसका नाम दूर का संबंध है, और जिनको इस भव में नहीं छोड़ा जा सके, मरे ज छुटको, मरे बिना जिसे छोड़ा नहीं जा सके उसका नाम नजदीक का संबंध। ठीक है ना? एक तो ये, इसलिए स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव पंडित जी इनको बोलते उपचरित। दूर का संबंध माने उपचरित, और नजदीक का संबंध माने अनुपचरित। देह का संबंध ऐसा है कि मन में तो ही छूटेगा, नहीं तो जहां तुम जाओगे यहां इसे भी ले जाना पड़ेगा साथ में, साथ में ही चंटा रहेगा 24 घंटा। तो इसलिए देह को, और दूसरा एक हाथ कारण तो है, दूसरा कारण क्या है कि जिसके साथ औपचारिकता निभानी पड़े वो उपचरित है, और जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसका नाम अनुपचारित। दूर का माने जिसके साथ औपचारिकता निभानी पड़े। चलो डॉक्टर साहब खाना खा लो, निमंत्रण कहां दिया है तूने मेरे को? खाना खा लो बोलता है, खाना बोलना था तो सुबह मेरे घर पर जाके निमंत्रण देता, तब मैं खाना खाता। कि क्या बात करता है, अब तेरे को भी मुझे निमंत्रण देना पड़ेगा? चुपचाप बैठता है कि नहीं? कि घर के खाने का क्या होगा, कोई खाने वालों की कमी है? बन गया तो बन जाने दे। तो एक कहते हैं अनौपचारिक, बोलते कि नहीं बोलते, लोक में ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते, जिसके साथ व्यवहार निभाना पड़े, औपचारिकता निभानी पड़े उसको बोलते हैं उपचरित। तो यहां तो भाई स्त्री पुत्र मकान जायदाद सबको ही ले लिया उपचरित में, इनके साथ क्या उपचार निभाना पड़ता है? देखो मैं और बताता हूं कि आप घर पर ऐसे शांति से बैठे हैं, बनियान पहने बैठे हैं, अब कोई आदमी आया तो फटाफट कुर्ता पहना टोपी लगाई तैयार हुए तो समझ लो उपचरित है, दूर का है, और ऐसे के ऐसे बैठे रहे तो समझ लो अनुपचरित है। ठीक है कि नहीं? फिर उठ के खड़े हुए, कपड़े नहीं पहने, आओ 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 बैठो बैठो तो समझ लो उपचरित है, और बैठे रहे आगे बैठ जाएगा, बैठेगा तो बैठ जाएगा बोलेगा तो समझ लो अनुपचरित। नजदीक का संबंध है तो आपको कोई उपचार निभाने की जरूरत नहीं, आओ भैया बैठो भैया, क्यों आए कब नहीं आए कुछ नहीं, आएगा बैठ जाएगा बगल में जाएगा चला जाएगा, क्यों क्यों समझ गया ना? तो जब आपके पास कोई आए तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़े उसका नाम अनुपचरित। तो जरा सा भी विकल्प आया तो उपचरित। समझ में आया कि नहीं आपके लिए? तो आप पत्नी पुत्र ये भी उपचरित कैसे हो गए? उनके लिए बयान नहीं पढ़नी पड़ती है, नंगे बदन भी बैठे रहते, उनसे तो नहीं कहना पड़ता आओ आओ बैठो क्यों? लेकिन यदि पेशाब करने जाना हो, लेटरिन जाना हो, तो बाथरूम के अंदर से चटकनी बंद करना पड़ती क्या नहीं करना पड़ती है? इसका मतलब यह है कि ये सब उपचरित है। कुछ तो औपचारिकता निभानी पड़ी ना, समझ गया ना? कुछ तो संकोच है ना, जिसके सामने कोई औपचारिकता नहीं है, अकेली देह ऐसी है, इसलिए वो अनौपचारिक संबंध है। उसके साथ तुमको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता है कि ये देह है तो इसके लिए शर्म करूं कुछ करूं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है कि नहीं? जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसे बोलते अनुपचरित। तो देह और आत्मा का जो संबंध है वो कौन सा है? अनुपचरित और असद्भूत। असद्भूत क्यों? कि हमें अपने पुण्य पाप के उदय से मिली। और अनुपचरित क्यों? कि इसके साथ मुझे कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है। ताराचंद जी साहब ख्याल है, और तो सब नए चक्र में लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा होगा ख्याल है ना? ये तो लिखने की चीजें नहीं है। इसमें कौन सा संबंध है? निर्हारण यो भासदी जीवो देहो हवधि खलु एको। ये कौन सा व्यवहार में है? यहाँ तो अकेला व्यवहार में लिखा, तो हमको इसका पूरा नाम क्या है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। व्यवहार नयो का पूरा अर्थ क्या, नाम क्या है? उपचरित क्यों नहीं है? क्योंकि ये देह का संबंध नजदीक का है, दूर का नहीं है। सद्भूत क्यों नहीं है? क्योंकि ये आत्मा का है नहीं, संयोग है, कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। घर में है ना? तो ठीक है, स्त्री पुत्र को पुण्य पाप के उदय से मिलते होंगे, धन भी पुण्य पाप के उदय से मिलता होगा, लेकिन शरीर तो पुण्य के उदय से मिला है ना कोमलचंद जी साहब? ये बीमार शरीर भी पुण्य के उदय से मिला, ये काला कलूटा काना कुबड़ा ये भी पुण्य के उदय से मिलता होगा। समझ गए ना बात? पुण्य के उदय से भी मिलता, पाप के उदय से भी मिलता। तो यहां कौन सा नय चल रहा है अपना 27वीं गाथा में? व्यवहार नयो का अर्थ क्या है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक ही है। जीव देह एक कह होते हैं, जीव और देह को एक गिने वो तो मिथ्या दृष्टि बताया था तुमने कल। जीव देह को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। तो इसका क्या प्रयोजन है कि भैया किसी प्रयोजन से कहा होगा, जरा किसी प्रयोजन से कहा होगा, ख्याल में रखना। तुम बहुत से बहुत तुम्हें विकल्प हो तो ये जानने की कोशिश करो कि क्या प्रयोजन था जो तूने मेरे गले पे तलवार लगाई थी। लेकिन तू मुझे मारने के लिए लगाई थी ये तो कहने का सवाल ही नहीं है। आचार्य महाराज ने तेरे गले पर तलवार लगाई है तो तुझे मारने को लगाई थी, ये तो विकल्प आना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या प्रयोजन है वो जानना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि तेरे को ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि मेरे गले पर तलवार लगानी पड़ी। इस नालायक देह को मेरी कहना पड़ा, ये गंदी देह को मेरी कहना पड़ा, नर द्वार बहे घिनकारी ऐसी देह को अपना कहने का तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी आचार्य महाराज? जवाब देना पड़ेगा आपको इसका। कह दे क्यों? पल रुदर राधमल थैली की कस बसा दी तय मैली, नव द्वार बहे घिनकारी। ऐसी देह को तुम मेरी कह रहे हो, जवाब देना पड़ेगा क्यों कहा तुमने मेरा ऐसी देह को। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। कितनी बढ़िया देह है अपनी, अभी समय समय धुली बनियान पहनी, और आप कहे मेरे पास बनियान नहीं है, चलो लो तुम मेरी उतार के दे तो पहनोगे? गंदी हो गई, 5 मिनट में गंदी हो गई। क्यों? कितनी बढ़िया है हमारी देह, और जाने दो, शुद्ध गर्म किया हुआ कुएं का पानी, अष्टपहरा घी, हाथ चक्की का आटा, क्यों उससे बना जो हलवा है ये तुम्हारे पवित्र मुंह में एक सेकंड को जाए और निकाल दे तो कोई छूने को तैयार है? शुद्ध भोजन सोला का दो, इसकी क्या हालत हो जाती है? और घंटा आध घंटा रह जाओ और फिर निकले तो वोमिटिंग बोलते ना, इसे उल्टी हो, उसे कोई देखने को तैयार है? और आठ दस घंटा हो गया निकले तो तेरी देह की संगति का परिणाम तूने देखा? इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। सच्ची बात है चौधर कुमार जी, नहीं है कोई दुनिया में ऐसी वस्तु कि इसके संयोग में आए पवित्र रह जाए। है है है, विचार करो। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। भैरव भागवत में लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? उसी पंक्ति के बाद ही लिखा कि नहीं लिखा? किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। मैं तो वो भगवान आत्मा हूं, इस देह की संगति में एक दो दिन नहीं रहा हूं, 59 बरस हो गए हैं इस देह की संगति में, और देहों की संगति में तो और रहा हूं, लेकिन अंदर में ज्ञान बिल्कुल पवित्र, परम पवित्र, शुद्ध बुद्ध है कि नहीं है? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, कह रहा कि नहीं है? एक चीज दुनिया में ऐसी है कि इसके संयोग में रहती है फिर भी वो अपवित्र नहीं होती है। तो ऐसी देह को जो जिसके संयोग में आकर सब अपवित्र हो जाएं, ये आत्मा है और शरीर और आत्मा एक ही है, ऐसा कहने के लिए कुंद को ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी जो इसको अपना कहना पड़ा? कहते नहीं, समय पे आकर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। कि कहना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा संकट आ गया था जिसकी वजह से गधे को बाप कहना पड़ा। कि चाहे जब विनय संकट के कहना है, विनय संकट के कहता रहे तो नहीं चलेगा, तो हेतु बताना पड़ेगा। कैसा मेरी जान फंस गई थी, मेरे ऐसा संकट आ गया था, क्यों इस शराबी कबाबी को तुम्हें हाथ पैर जोड़ रहे थे, क्या संकट आ गया था? क्या साहब वो इनकम टैक्स ऑफिसर था? तो समझ में आता है कि ठीक है तुम्हारा, लेकिन मुफ्त नहीं, लेना नहीं देना नहीं, क्यों? शराबी कबाबी को हाथ जोड़ो, आचार्य कहते कि हाँ हाँ बहुत बड़ा प्रयोजन है, इस नए को कहने का क्या प्रयोजन है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए का, अपना कहने का प्रयोजन तो कल बताया था, सदाचार की सिद्धि, पशु से आदमी को अलग बनाना, बताया था कि नहीं बताया था? नियम पशु बन के रह जाते, अनुवृत महावृत कैसे होते, इसके कारण हमने उस व्यवहार नय को जिनवाणी में स्थान दिया। तो इस देह को आत्मा कहने वाले व्यवहार नय को क्या कारण था? तो आचार्य कहते बहुत बड़ा कारण था कि 45वीं गाथा में लिखा, 45-46वीं गाथा की टीका में, कि जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, यदि शरीर को भी अजीब कहते तो ऐसे ही त्रिस स्थावर जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होती। जैसे लकड़ी को तोड़ देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही किसी का हाथ तोड़ देने से भी हिंसा नहीं होती। ये प्रयोजन है, देखो निकालो 40-45-46 में गाथा है आपके पास समय साहब, कि मतलब गई गुरुदेव के साथ पद्धति तो मैं बताता हूं। अभी आपके पास नहीं है तो मेरा भरोसा करना पड़ेगा। क्यों है ना? तू यदि व्यवहार में ना बताया जाए तो परमार्थ से निश्चय नय से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर भी जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रिस स्थावर जीवों को निशंक प्रया मसल देने कुचल देने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। ख्याल में आएगा ना? ये लिखा 40वीं गाथा की टीका में, पढ़ लेना घर जाके देख के। ये प्रयोजन है कि इसके लिए क्या अर्थ हुआ? अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए देह और आत्मा को एक कहा जाता है। जरा देख के चलना भैया, जीव है जीव है। अरे जीव है, ये आंख से तो दिखाई देते हैं ना, ये तो सब पुद्गल होते हैं भैया। जीव की आंख से दिखाई देता है, आत्मा तो अनुभव की वस्तु है। ऐसा कह के आंख मील के चलता जाएगा मरेगा। वो जीव है, अरे ये भी आत्मा है, यहाँ ये भी आत्मा है, तो ये भी आत्मा है तो मैं इनका ध्यान करूंगा। इनका ध्यान करने के लिए ये आत्मा नहीं है, ध्यान करने के लिए तेरे देह देवल में विराजमान जो त्रिकाली ध्रुव है ना, वो है आत्मा। तो ये भी जो कीड़े मकोड़े है ना, ये भी परमात्मा है। ये परमात्मा है तो चलो पूजा करो, जय जय नाथ परम गुरु हो। अरे पूजा करने के लिए नहीं है परमात्मा, तू क्या करे देख के चल, तेरे पैर के नीचे आके कुचल के ना मर जाए, इसके लिए परमात्मा तेरे को बताए जा रहे हैं। इनको जीव कहने का उद्देश्य, इनकी हिंसा से हम विरक्त हो, हमारे हृदय में करुणा का संचार हो। यदि इस नये को नहीं मानेंगे तो ईरिया समिति नहीं बनेगी कि चार हाथ जमीन देखकर क्यों चले। बोलो समझ गया ना, ऐसा समिति नहीं बनेगी, आदान निक्षेपण समिति नहीं बनेगी, प्रतिष्ठापना समिति नहीं बनेगी, क्योंकि उन जीवों उनका जीव मानकर उनकी रक्षा के भाव से होती कि नहीं होती है। बोलो इसमें की उपयोगिता है कि नहीं है, क्या बेकार है। पंडित जी साहब समझ में आया कि नहीं, इसमें की उपयोगिता है कि नहीं है, कि देह और आत्मा को एक मानना क्या है जनवाणी में, इसमें की उपयोगिता उसको पहचान लेते उसकी मर्यादा। अब इस उपयोगिता के कारण इनको जीव कहा तो हम इन्हें जीव मान लें और इन्हीं का ध्यान करने लग जाएं तो क्या होगा। इनका ध्यान रखना है कि जे मर ना जाएं, इनका ध्यान करना नहीं है। ध्यान किसका करना है कि देह देवल में देह से भिन्न जो भगवान आत्मा है, तो ध्यान करने के लिए वो नीचे की पंक्ति वाला आत्मा है कि नदु निश्चयेण जीवो देहो कदापि एकत्थो, कि निश्चय ऐसे जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। तो यहाँ जो निश्चय नय का जो आत्मा है ना, वो ध्यान का ध्येय है, वो सिद्धांत का सिद्धेय है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का ज्ञेय है, इस काम का है वो। और ये जो देह जीव है, ये अहिंसात्मक आचरण के लिए ये जीव है, ये दोनों का प्रयोजन है। जब तक प्रयोजन नहीं समझेंगे, जिनवाणी का मरम नहीं समझेंगे, तो जिनवाणी पढ़ करके भी हम नुकसान करने वाले हैं। सोलह कांत पूजन कर रहे थे ना अभी आप, अच्छी चल रही थी ना, गजब हो गया। रत्नत्रय की पूजन 3 दिन और सोलह कांत की 30 दिन, गजब हो गया। करते कि नहीं करते आप लोग, सब करते कि नहीं करते। रत्नत्रय तो साक्षात मुक्ति का कारण है ना दादा, उसकी 3 दिन और जे काय का कारण है, सोलह कांत तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। मैंने मोक्ष के कारण को 3 दिन और बंध के कारण को 30 दिन, गजब हो गया। नाराज मत होना, पूरी बात सुन लेना। ऐसा ही हो गया ना, फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश, कंटनिया को 300 और मनी राम को 30। एक शादी में नाचने वालों को भी बुलाते हैं कि नहीं, और एक पंडित भी चाहिए फेरे पारने वाला। मनी राम नाम के पंडित थे और कंचनिया नाम की बेस्या, दोनों को बुलाया था। तो कंचनिया नाम की बेस्या को 300 रुपए दिए और मनी राम को 30 रुपए में टरकाया। तो उन्होंने कहा कि फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश, और कंचनिया को 300 और मनी राम को 30। लेकिन क्या करे, वो तो कंचनिया थी ही। कंचनिया माने जो सोने पर नाचे, कंचन माने सोना, और ये भी भाग्य से पंडित भी मनी राम बन गए अंग्रेजी का मनी राम ने हिंदी का मनी राम ने जब किसी ने अपने बेटे का नाम मनी राम रखा होगा तो उसने सोचा भी नहीं होगा मनी रुपया को बोलते हैं। क्यों तो ये विवेक यानी हमारे अंदर में विवेक में अंदर में है थे सोने का अब समझ में आ रहा कि नहीं कि बंध का कारण भले ही तीर्थंकर प्रकृति का सही लेकिन है तो बंध का कारण ना। उनको 30 दिन पूरा भादो महीना और उसमें त्रय वो 13-14 पूने 3 दिन आएंगे कि नहीं अभी तो पूजा बस शुरू ही नहीं हुई इसलिए मुझे याद आ रही थी रत्नत्रय के बेचारी का नंबर ही नहीं आया और सोने का एक दिन नहीं कही तो तूफान मच गया अरग से काम नहीं चलेगा पूरी होना चाहिए। क्यों बंध का कारण भी पूजा करने योग्य है बंध के कारण की भी पूजा होती है बंध के कारण भी पूजा होनी चाहिए कि हम क्या करें पुराने पंडित लिख गए और तुम्हारी जनवाणी में छपी है जयपुर वाली जनवाणी में भी छपी है वहां की भी जिन्होंने रचना में छपी है हम क्या करें। लेकिन भाई साहब सोलह कारण भावनाओं की पूजा होती ही नहीं है ये पूजा जो आप पढ़ते हो वो सोलह कारण भावनाओं की पूजा है ही नहीं ही? क्या कह रहे हैं आप कि हम तो 30-30 साल से पढ़ रहे तो तुम पढ़ो उस पूजन में लिखा है मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ो क्या लिखा था सोलह कारण भाय जे तीर्थंकर जे भये हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए ये तो उनकी पूजा है किनकी सोलह कारण भावना भाग्य जो तीर्थंकर हुए थे और जिनके जन्म कल्याण के समय सुमेर पर्वत में जिनका जन्माभिषेक किया गया था तो उस बालक की है कि नहीं घबराओ मत आगे चलो ना क्या सोलह कारण भावन भाय सोलह तीर्थं कर पद पाए परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु हो चार से इसका बोलो कि सोलह कारण भावना भाकर भाय माने भाकर और तीर्थंकर पद पाए माने पाकर है परम गुरु होए माने अरहंत हुए परम गुरु कैसे बोलते जानते परम गुरु वे नमा परम्पराचार्य गुरु वे नमा जो पांच परमेश्वरी में दो तरह का बंटवारा होता है एक बंटवारे के हिसाब से अरहंत और सिद्ध है देव और आचार्य उपाध्याय और साधु है गुरु और दूसरे बंटवारे के हिसाब से सिद्ध है अकेले देव और अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधु ये है गुरु। क्यों गुरु से कहते हैं साक्षात हमको पढ़ाए सीधा डायरेक्ट पढ़ाए तो अरहंत भगवान भी दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें पढ़ाते हैं ना डायरेक्ट इसलिए वो गुरु में आते हैं तो तीर्थंकर अरहंतों की दिव्य ध्वनि खिंचती है ना तो उन्हें परम गुरु कहते हैं तो कहते हैं तीर्थंकर होकर जो परम गुरु बने तो ये तीर्थंकर अरहंतों की अकेले वो जन्माभिषेक हुए थे उस बालक की नहीं जो अरहंत बन गए तो जे तीर्थंकर अरहंतों की पूजन है ये सोलह कारण भावनाओं की पूजन है ही नहीं तो क्यों लिखा सोलह कारण पूजा। अरे वो संक्षेप में तो ऐसे ही नाम लिखा जाता है ना अब कभी कभी ऐसा होता है किसी का नाम संक्षेप में लिखने में बिगड़ जाता है किसी का नाम बन जाता है क्यों जैसे किसी रामदास नाम है अपन राम कहेंगे तो बन जाएगा भगवान दास नाम का भगवान कहेंगे तो और बड़ा हो गया अब किसी का हटाएंगे तो बिगड़ जाता है समझ गए नहीं समझे आप तो वो सोलह कहां तो संक्षिप्ति में नाम है लेकिन किनकी पूजन है देखो पढ़ो दरे सब शुद्ध भावना भाय सोलह तीर्थंकर पद पाए परम गुरु होए परम गुरु होकर हे जय जय नाथ, तुम परम गुरु हो। उन परम गुरु की पूजन है वो तो, अरहंत भगवान की पूजन है, 16 कारण भावनाओं की पूजन है ही नहीं। मर गए, 40 वर्ष निकल गए 16 कारण भावना की पूजा समझ समझ के, वो था ही नहीं उनकी। अब कवि की कहां गलती है, अब तुम नहीं समझो तो हम क्या करें। अब कल पढ़ोगे तो अलग मजा आएगा। क्या कहते, कुंटलों के कुंटल चावल बेकार गए। अरे बंद के कारण की पूजन होती है ही नहीं वो बंद के कारण की पूजन। मंगललाल जी साहब कितना स्पष्ट है कि नहीं। और फिर इस लोभ में कि मैं 16 कारण पूजन करूंगा तो तीर्थंकर की बंदेगी, तीर्थंकर की बंदेगी, तीर्थंकर धोखे में मत रहना। गारंटी से बंधने वाली नहीं है ये मैं कहता हूं, घबराना नहीं, प्रमाण है मेरे पास, मैं जानता हूं। क्योंकि ये बात आपसे कह रहा हूं तो कोई आसान नहीं है आप मान लेंगे आसानी से, क्योंकि आपको तीर्थंकर की बांधने का इतना लोभ है कि आसानी से मानेंगे नहीं। लोग तो बिना ही बंधे बन जाते हैं। क्योंकि लोभ बहुत, तीर्थंकर होने का लोभ बहुत है, मोक्ष जाने का इतना नहीं है। तुम अकेले मोक्ष सीधे चले गए तो क्या होता है, कोई नाम लेने वाले नहीं मिलेगा, पानी देवा नहीं मिलेगा। 5.5 करोड़ मुनि अर्घ एक साथ 5.5 करोड़ निपटा दिए जाएंगे, कोई नाम लेने तक वाला नहीं मिलेगा। तीर्थंकर हो गए तो पूजन होगी, ये सबको तीर्थंकर हो गए मोक्ष जाना है। किसी को पूजने में ज्यादा है, मोक्ष जाने में किसी को रस नहीं है। इसलिए भाई क्यों नहीं हम, क्यों नहीं हम 16 कारण पूजन पढ़ेंगे तो, इसलिए नहीं होगे कि जिन्हें तीर्थंकर होना है 24 आगे की 24 ही में उनके तो नाम घोषित हो गए। तुम्हारा नाम उसमें नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि जो 16 कारण भावना भाएंगे उन्हें सबको तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 आदमी भाए तो 100 हो जाए, एक समय में एक ही होगा ना। भारत क्षेत्र में जो भी जितने होते हैं मान लीजिए 70 होंगे, 172 तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब यह है कि वो लिमिट नक्की है, तो तुम्हारे टाइल्स में भाने से कैसे हो जाएगी। एक तरह समझ में आया ना। दूसरा सुनो कि उस पूजन में भी कहीं लिखाई नहीं है, पढ़ो आप। धरे सब शोध धरे जो कोई तो तीर्थंकर नहीं है, नहीं लिखा तीर्थंकर की नहीं लिखी। लिखिए ताको आवागमन न होई, तो इसमें कहां लिखा तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। एक की तो छुट्टी हुई ना, आवागमन नहीं होगी माने सीधा मोक्ष में जाएगा, ऐसा अर्थ हुआ ना। फिर विनय महाधारे जो प्राणी सिर बनीता की सखी बखानी, यहां भी नहीं लिखा वो सिर बनता की सखी। वो तीर्थंकर की तो सखी भी नहीं है। क्या मतलब सिर बनता की सखी क्यों लिखा, सखी का क्या काम है जानते आप। पहले राजा लोग होते थे उनके सखा हुआ करते थे और रानियों की सखियां हुआ करती थी, और उनका एक ही धंधा था राजा साहब को रानी साहब से मिलाना। क्योंकि रानियां ढेर सारी होती थी और जिसकी सखी चतुर होती थी वो किसी तरह फंसा के राजा को ले आती थी उस रानी के पास। तो सखी का काम एक ही था कि रानी के पास राजा को घेर घार के लाना तरकीब से। लेकिन उसकी मर्यादा कहां तक थी, देरी तक। देरी तक राजा को लाए तो वो सहयोगी है पति को मिलाने में, और देरी के भीतर भी आ जाए तो बेई सखी वो उसका सहयोगी नहीं रह करके विरोधी हो जाएगी, क्योंकि वही बाधक हो जाएगी, साधक नहीं रहेगी पति पत्नी के मिलान में। तो इसलिए उसकी मर्यादा देरी के बाहर तक रहने में ही है। इसलिए विनय की मर्यादा तब तक ही है कि जब तक तुम शुद्धोपयोग में नहीं गए, अपनी शिव रमणी से मिलने नहीं रहे, आत्मा से तुम मिलने नहीं लगे तब तक विनय, उसके बाद विनय नहीं। देखो हम आपके घर आए उठ के खड़े नहीं हो तो आप जैसे नालायक कोई दूसरा नहीं, और तुम सामायिक में वैसे हो और हम आए और खड़े हो जाओ तो तुम जैसा नालायक दूसरा नहीं। विनय मर्यादा खत्म हो जाती है कब, जब आत्मा से मिलन हो रहा हो तब। तो सिर्फ बनता की सखी है विनय, और सीले सदाद्र जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। अपना तो कुछ कल्याण होने ही वाला नहीं है, साफ लिखा के नहीं लगा कि औरों की आपदा टाले। सील वृत अनुवृत महावृत तो आसव है, बंद के कारण है, वे अपनी आपत्ति क्या टालेंगे, अपन को तो पुण्य का बंद करेंगे, तो औरन की आपदा टाले कैसे। भाई पूजन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुमने अहिंसा अनुवृत्त ले लिया, अहिंसा महावृत ले लिया, तो जिनको तुम मारते वे बच गए, उनकी आफत चल गई। समझ में आया कि नहीं है? तुम झूठ बोलते तो कोई ना कोई चक्कर में आता ना, तुमने झूठ नहीं बोला तो वो बेचारा चक्कर में से बच गया, उसकी आफत चल गई। तुम यदि चोरी करते तो किसी का माल जाता कि नहीं जाता, उस पर आफत आती, और तुमने नहीं की तो उसकी आफत चल गई, ठीक है कि नहीं। और तुमने किसी माँ बहन को नहीं छेड़ा तो उस माँ बहन की आफत चल गई। तुमने परिग्रह नहीं जोड़ा तो दूसरे के हिस्से में भी थोड़ा आ गया। देखो समझ में आया कि नहीं आया? सील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। कितना सोच के लिखा है, तुमने सोचते ही नहीं, हम क्या करें। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महा तम नाही। उसका मोह नहीं है। जो एक ध्यान देना है, 16 बार है ना, 16 में 4 जगह आया है जिसका फल मोक्ष बताया है, और बाकी की जगह मुफ्त में ही तर्क आया है। 4 आराधना है ना, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, तप आराधना। तो दर्शन सिद्धि में दर्शन आराधना ने कहा ना, आवागमन न हुई मोक्ष बताया कि नहीं, और ज्ञानाभ्यास ये ज्ञान आराधना, तो मोह महात्म नहीं तो मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया। वह जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर को गुरु भाषा, तो हो गया तप आराधना में मोक्ष। 4 जगह तो मोक्ष बताया, और बाकी जगह ऐसे ही निपटा दिया, और उनकी आपदा पाले। क्यों ऐसे एक को पढ़ना? देखो मैं पूरी नहीं सुनाता हूं, 2-3 बातें और सुना देता हूं, फिर क्योंकि अपना समय तो खो गया है, 5 मिनट बाकी हैं सिर्फ। जो अरे हंत भगति मन आने सूजन विषय कसाए न जाने। अरहंत की भक्ति में मन लगाएगा तो विषय कसाए नहीं, कभाव नहीं आएगा, विषय कसाए तेरे ज्ञान के ही गेय नहीं बनेंगे। जो आचार्य भगति करे है सो निर्मल आचार्य धरे है, बहुश्रुत बंत भगति जो करही सो नर संपूर्ण श्रुत धर। समझ में आ रहा है ना सर? अब तो ख्याल में आ रहा होगा ना, कहीं भी ये नहीं लिखा गया तीर्थंकर भक्ति बनेगी, हम जबरदस्ती लगा रहे तीर्थंकर भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, तीर्थंकर भक्ति। अंत में एक जगह लिखा कि बत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद भी पावे। वास्तव में तो ऐसा है कि दर्शन विशुद्धि जिसके है सम्यक दृष्टि आत्मा के बात सल भाव हो, सारे जगत के प्रति प्रीति बन जाती है। 16 की जरूरत ही नहीं, बिना 16 के भी हो जाती है। तो 16 क्यों लिख दी थे जनवाणी में? वो भी तो जनवाणी माता है। तुम अभी यार कहे थे ऐसा विश्वास रखना, ऐसा विश्वास रखना, और तुम ठोक रहे हो उसके विरुद्ध। तत्वासूत्र में लिखा है तीर्थ स्थल से, नहीं नहीं तो वो 4थे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। तो 4थे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक जितने प्रकार के शुभ भाव हो सकते हैं उन सबको आंख मीच के गिना दिया कि जब भी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंदी प्रकृति है। निरंतर बंदी जानते हैं ना, कि जब से बंधना शुरू होती है तो बंधती ही रहती। नरक में जहां राधा सुन कॉपी भी बंध रही है, अब वहां कौन सी साधु हो रही है सब 12 भावनाएं, क्यों आप समझे ना? तो 16 सारी की सारी वहां निभेंगी नरक में, नंदे पड़ रहे होंगे वहां, आप समझ रहे हैं नहीं? वहां पर सील और सदा जो नर पाले कहां है अनुवृत्त, नरक में होता ही नहीं है। अरे अनिवार्य होती तो वो नरक में कैसे बन सकती थी संगत प्रगति। तो जब 24 घंटा बन रही वो तो 24 घंटा 16 कारण भावनाएं होती है क्या? तो कभी कोई है कभी कोई है, तो किसी से भी बन जाती, लेकिन वात्सल्य भाव जरूर होना चाहिए। सारे जगत के जीवों का कल्याण कैसे हो, इसका नाम है वात्सल्य भाव। और उसकी वजह से, क्योंकि मैं तो अकेली हिंदी जानता हूं, गुजराती वालों को नहीं समझा, मराठी वालों को नहीं समझा सकता, अंग्रेजी वालों को नहीं समझा सकता, अब क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं, अब सबको समझाने का भाव है। तो उसको तीर्थंकर प्रकृति बन देती है तो ऐसी भाषा मिलती है कि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में लोग उसकी बात समझते हैं। अकेले बात सल समझ गए ना, तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। क्यों, ख्याल में आएगा नहीं? अब और आगे देखो, मांग क्या की गई है आखिर। सोलस कारण गुण करे तीर्थंकर पद हो, ऐसा नहीं लिखा? क्या लिखा था? सोलस कारण गुण करे हरे चतुर गति बास, कि चार गतियों का बास हर लेगा तो तीर्थंकर पांचवी गति में होते होंगे। तो सोलस कारण का गुण तो ये है, क्या गुण करती है सोलस कारण भावना, क्या गुण करती है तीर्थंकर पद वेदिका लिखी, चारों गतियों का बास हर लेती है, तो मोक्ष में तो तीर्थंकर पद होता ही नहीं है। और पुण्य पाप सब नाश के, तीर्थंकर प्रकृति तो पुण्य प्रकृति है ना, इसमें तो लिखा है नाश के, तुम कह रहे बांध के। क्या गुण करता है सोलह कारण भावना, कि पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। क्या लगा, ये क्या पंक्ति है, पूजन की पंक्ति में रहस्य भरा पड़ा है, लेकिन कोई देखे तब ना। हम तो समझते हैं मैंने खड़े खड़े होकर बोल करके बोल लिया वो धर्म हो गया, सोचने का काम ही नहीं है, विचारने का काम ही नहीं है। और अच्छा गले लगाकर ध्वज मजीरे के साथ में गा करके भगवान को सुना दिया, भगवान तू सुनना हमें क्या, हम तेरे लिए है ये तो। क्यों, यदि हम अंदर से गहराई से विचार करें तो सब जगह तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। दृष्टि चाहिए, दृष्टि होगी तो सब जगह प्राप्त होगा, और दृष्टि नहीं होगी तो कहीं भी प्राप्त नहीं होगा।